रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश अतीत की गलतियों को सुधारने का प्रयास है, सरकार के प्रवक्ता सुस्मित पोखरेल का कथन। लिम्पिया धुरा लिपू लेक और कालापानी सीमा विवाद को कूटनीतिक माध्यम से सुलझाने का प्रयास जारी है, परराष्ट्र मंत्रालय ने दी जानकारी। नेपाल में इस वर्ष मानसून के दौरान औसत से कम वर्षा और तापमान बढ़ने का अनुमान, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का प्रक्षेपण। और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट में 3 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आगामी वैशाख 28 गते सोमवार को संघीय संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल से आग्रह करने का निर्णय किया है। आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने राष्ट्रपति पोर्टल से संसद को संबोधित करने का अनुरोध करने और सभी सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आह्वान करने का निर्णय किया है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। मंत्री पोखरेल ने बताया कि बैठक ने विभिन्न देशों में कार्यरत 15 महावाणिज्य और वाणिज्य दूतों को पदमुक्त करने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बाध्यकारी श्रम महासंधि 1930 से संबंधित वर्ष 2014 के प्रोटोकॉल नंबर 29 को अनुमोदन के लिए संघीय संसद में पेश करने की स्वीकृति देने सहित अन्य निर्णय भी किए हैं। इस दौरान सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री पोखरेल ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश अतीत की गलतियों को सुधारने का प्रयास है। मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करते हुए पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में मंत्री पोखरेल ने कहा कि न्याय क्षेत्र में सुधार की मांग को संबोधित करने के लिए इस बार कार्य संपादन मूल्यांकन के आधार पर प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार मामलों के निराकरण और कार्य संपादन सूचकांक के आधार पर प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश हुई है, इसलिए इसे अब तक की सबसे बेहतर सिफारिश माना जाना चाहिए। बता दें कि कल हुई संवैधानिक परिषद की बैठक ने सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार शर्मा की प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश करने का निर्णय किया था। परराष्ट्र मंत्रालय ने कहा है कि लिम्पिया धुरा लिपू लेक और कालापानी क्षेत्र में दिखाई दे रहे सीमा विवाद को कूटनीतिक माध्यम से समाधान करने के लिए सरकार प्रयासरत है। आज मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने कहा कि लिपू लेक के संदर्भ में सरकार की ओर से स्पष्ट धारणा पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी है। प्रवक्ता क्षेत्री ने बताया कि चीन और भारत के बीच संचालित कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाल की भूमि लिपू लेक होकर गुजरती है। इस बारे में सरकार ने गत 20 वैशाख को ही स्पष्ट धारणा सार्वजनिक कर दी थी। उन्होंने साफ किया कि नेपाल सरकार का मानना है कि महाकाली नदी के पूर्व स्थित लिम्पिया धुरा लिपू लेक और कालापानी नेपाल के भूभाग में आते हैं और ये तथ्य 1816 की सुगोली संधि में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इसी आधार पर नेपाल कूटनीतिक समाधान का प्रयास कर रहा है। प्रवक्ता क्षेत्री ने यह भी बताया कि इस विषय में दोनों पड़ोसी देशों भारत और चीन को जानकारी दी जा चुकी है और नेपाल समय समय पर उन्हें इस बारे में स्मरण कराता रहा है। संसदीय सुनवाई समिति ने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार शर्मा की संसदीय सुनवाई प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। कल ही संवैधानिक परिषद ने शर्मा को प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद आज सुनवाई समिति की बैठक आयोजित की गई। आज हुई सुनवाई समिति की बैठक में प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आह्वान किया गया। समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ ने जानकारी दी कि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश की सुनवाई के लिए 10 दिनों का समय देकर शिकायतें आमंत्रित की गई हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्त उप कुलपतियों की सिफारिश के लिए गठित समिति ने आवेदन आह्वान किए हैं। उप कुलपति चयन एवं सिफारिश समिति ने 8 विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन आह्वान किए हैं। समिति ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय और राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के रिक्त उप कुलपति पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष नेपाल में मानसून के दौरान औसत से कम वर्षा होने और तापमान में वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। ये प्रक्षेपण आज विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मानसून फोरम कार्यक्रम में सार्वजनिक किया गया। मौसमविद सुदर्शन हुमागाई ने मानसून की मौसमी स्थिति पर प्रस्तुति देते हुए कहा कि आगामी मानसून अवधि में देश के अधिकांश क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आगामी जेठ 18 से आश्विन 14 तक रहने वाले मानसून में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान पूरे देश में औसत से अधिक रहने की संभावना है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा है कि भूमि संबंधी सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार आगे बढ़ रही है, इसलिए किसी भी पीड़ित को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिनिधि सभा की कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की आज हुई बैठक में मंत्री रावल ने कहा कि भूमि समस्या के समाधान के लिए पहचान और व्यवस्थापन के काम मुख्य हैं और इसके लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भूमिहीन और पीड़ितों के नाम पर राजनीति करने वालों के प्रति सरकार सख्त रुख अपनाएगी। सरकार ने भूमि संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन समाधान के लिए काम शुरू कर दिया है और अगले सप्ताह तक प्रगति के कुछ संकेत दिखाई भी देंगे। मंत्री रावल ने कहा कि सहकारी पीड़ितों की रकम वापसी के लिए ऋण वसूली, बचत वापसी और नियमन को प्राथमिकता में रखकर समस्या समाधान का काम शुरू किया जा चुका है। उन्होंने सहकारी पीड़ितों से आग्रह किया कि वे इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि उनकी बचत राज्य कोष से नहीं बल्कि ऋण वसूली के माध्यम से वापस की जाएगी। बैठक में सांसदों ने भूमिहीन दलित कुंबासी और अव्यवस्थित बसोबास से जुड़े मुद्दों को दीर्घकालीन समाधान, गुठी संबंधी समस्याओं तथा सहकारी पीड़ितों के लिए ऋण वसूली और बचत वापसी के विषय उठाए। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने नदी जन्य तथा खनिज पदार्थों के उत्खनन और संकलन को स्वीकृत मापदंड, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं प्रचलित कानून के अनुसार ही करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और निकायों को निर्देश किया है। कार्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले पत्थर, गिट्टी, बालू, मिट्टी सहित नदीजन्य और खनिज पदार्थों का उत्खनन स्थानीय तहों के माध्यम से होता रहा है, लेकिन इनके उत्खनन, संकलन, ढुवानी और बिक्री वितरण में गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायतों और सूचनाओं पर ध्यान दिया गया है। साथ ही अवैध उत्खनन, गैरकानूनी संकलन तथा अनधिकृत ढुवानी को पूर्ण रूप से नियंत्रण में लेने के लिए नियमित गश्ती, परिचालन, जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में निगरानी और अवैध गतिविधियों पर तत्काल पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश भी किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा कि कलाकार, सृजनात्मकता और संस्कृति राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। नातीकाजी राष्ट्रीय संगीत सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह 2083 को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोडेल ने कहा कि कला, साहित्य और संगीत समाज में एकता, सहिष्णुता और समृद्धि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक नेपाली गीत संगीत के सृजन में नातीकाजी का योगदान अनुकरणीय रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न 21 कलाकारों को सम्मानित किया गया। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनैतिक अभ्यासों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज काठमांडू में नेपाल विश्व संबंध परिषद के 78वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सभामुख अर्याल ने कहा कि नेपाल को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य आधार स्तंभों के आधार पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा और प्रवर्धन, आर्थिक कूटनीति तथा विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि मंत्रालय परिषद के प्रयासों और गतिविधियों को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति से जुड़े सुझावों और योगदानों का उच्च मूल्यांकन करने की बात भी कही। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने मौसम पूर्वानुमान और आपदा पूर्व तैयारी को प्रभावी बनाकर क्षति कम करने पर जोर दिया है। आज जल तथा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मॉनसून फोरम कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जल तथा मौसम संबंधी सूचनाओं के प्रभावी उपयोग से जनधन की सुरक्षा की जा सकती है और सामाजिक, आर्थिक व भौतिक पूर्वाधार में होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया में आज सुबह माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फटने से 3 हाइकर्स की मौत हो गई। इंडोनेशिया के वोल्केनोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज्वालामुखी स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7:41 पर फटा। इंडोनेशिया के नॉर्थ मोलुकू प्रांत का डुकोनो वोल्केनो देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये पर्यटकों के बीच भी काफी मशहूर है। लोकल पुलिस चीफ ने बताया कि करीब 15 लोगों को वहां से बचाया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश अतीत की गलतियों को सुधारने का प्रयास है, सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का कथन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी सीमा विवाद को कूटनीतिक माध्यम से सुलझाने का प्रयास जारी है, परराष्ट्र मंत्रालय ने दी जानकारी। नेपाल में इस वर्ष मॉनसून के दौरान औसत से कम वर्षा और तापमान बढ़ने का अनुमान, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का प्रक्षेपण। और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट में 3 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।